हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 11वां अध्याय श्लोक संख्या 38 एंड 39। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरेन्द्रस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि, यं ब्रह्मावरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे, गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विधो सुरासुरकरा, दिवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, श्लोक संख्या 38। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया।
शब्दात् एतत् ईशन, एतत् अर्थात यह, ईशन मतलब दिव्यता या भगवता, ईशस्य भगवान की। वास्तव में यहाँ पर सूत्र गोस्वामी बताते हैं भगवान की भगवतता है। भगवान की भगवतता क्या है? प्रकृतिस्थोपि तद्गुणे, प्रकृतिस्थोपि वो प्रकृति के अंदर स्थित रहते हैं, वो प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, अपि तद्गुणे और उनके गुणों गुण के अंदर भी रहते हैं, प्रकृति के अंदर भी रहते हैं, फिर भी न युज्यते, न युज्यते मतलब कभी भी प्रभावित नहीं रहते। वो प्रकृति के गुणों में रहकर भी, प्रकृति के अंदर रहकर भी, कभी भी गुणों में बंधते नहीं है, न युज्यते और सदात्मस्थ है मतलब वो हमेशा आत्मा में स्थिर रहते हैं, सदा आत्म स्थिर नित्य आत्मा में स्थित रहते हैं, वो हमेशा दिव्यता में स्थित रहते हैं, कभी भी प्रकृति के अंदर आकर लिप्त नहीं हो जाते। भले ही प्रकृति में रहते हैं लेकिन प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधते नहीं है, लिप्त नहीं होते हैं। सदात्मास्थ है यथा बुद्धि सदाश्रय, लेकिन फिर भी यथा बुद्धि सदाश्रय जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उसी प्रकार से भगवान का आश्रय लेता है, वो उसी तरह से भगवान के विषय में सोचता है। मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान प्रकृति में रहते हुए भी कभी प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधते नहीं है, लेकिन समस्त लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान को समझते हैं। मतलब जो व्यक्ति के पास जैसी बुद्धि होती है वो भगवान को भी वैसा ही समझता है, लेकिन भगवान वास्तव में प्रकृति के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो बुद्धि हम इस मेटेरियल जैसी हमारी बुद्धि होती है ना, उससे नहीं समझ सकेंगे भगवान की दिव्यता को, भगवान की भगवत्ता को। इसीलिए भगवान बताते हैं 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नमाम उपयान्ते। फिर जब वो कंटिन्यूस मेरा भजन करेगा, मेरी पवित्र नाम का स्मरण करेगा, मेरी पवित्र कथाओं को श्रवण करेगा, फिर उसको मैं दूसरी बुद्धि दूंगा, ये वाली बुद्धि से नहीं समझ में आऊंगा, ददामि बुद्धि योग, फिर मैं उसको बुद्धि योग दूंगा और उस बुद्धि योग के द्वारा वो समझेगा कि किस प्रकार से मैं क्या हूँ, मुझे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, मेरी ऐश्वर्य, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी भगवतत्ता को वो समझ सकेगा। अनुवाद देखिए, यह तो भगवान की दिव्यता है कि वे प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों तथा वैदिक ग्रंथों यानी श्रुति और स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता लेश मात्र भौतिक नहीं होती। चाहे दिव्य कुछ भी होता है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर भौतिकता ना हो। जब
साधारण भक्त भी, जब कोई भक्त होता है ना, वो भी यदि शुद्ध भक्त बन जाता है ना, तो उसके अंदर भौतिकता नहीं रहती। तो बोला भगवान के अंदर भौतिकता कैसे हो सकती है? तो यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान दिव्य निर्गुणी होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष हैं, जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध या भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? कितना सुंदर यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधारण बुद्धि से हम ये सोचेंगे ना कि भगवान दिव्य हैं तो उनका संबंध भी दिव्य होता है। चलो लक्ष्मी महारानी के साथ तो उनका संबंध दिव्य है, लेकिन जरासंध के साथ कौन सा दिव्य संबंध है? जो असुर यहाँ पर बार बार भगवान के ऊपर आक्रमण करते थे, उनका उनके साथ कैसा संबंध है? उनका ये दिव्य संबंध कैसे हो सकता है? तब श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवतत्ता, दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। बहुत ही खास बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं, तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं। भले ही हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर एक भौतिक वस्तु भी भगवान से ही उत्पन्न होती है, तो जब भगवान कोई कार्य करते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर आकर, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान इन गुणों से ऊपर नहीं है, इन्हीं के अंदर है। परंतु वास्तविकता ये है कि ऐसे गुण कर्मों से वो सदैव ऊपर रहते हैं। वो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहिए चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं, जहां तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान चाहे कहीं भी चले जाए, भगवान चाहे सुअर की रूप में, सुअर का भी अवतार ले लेते हैं, वराह का अवतार ले लेते हैं, कभी नरसिंह का अवतार ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीच योनि में उत्पन्न होने के बाद भगवान की भगवत्ता में कोई कमी आ जाती है। वही वराह भगवान जब समुद्र में से निकल रहे थे धरती को लेकर, तब ऐसे जब अपने शरीर को ऐसे हिला रहे थे तो उनके बालों में से जो पानी निकल रहा था ना, तो सारे देवता जो है वो वहां पर खड़े हो रहे थे कि भगवान के शरीर से निकला हुआ जल जो है वो हमें पवित्र करेगा। हालांकि पृथ्वी को पाताल में फेंक दिया था, पाताल का पानी स्वच्छ नहीं होता, लेकिन वो जल जब भगवान के शरीर से स्पर्श हो गया तो वो जल, देवता भी आकांक्षा कर रहे थे कि हमें उस जल की बूंद पड़ जाए तो हमारे अंदर से अपवित्रता समाप्त हो जाए। अर्थात भौतिक जगत में चाहे आप देवता भी बन जाओ, फिर भी जब तक भगवान के साथ संपर्क में नहीं होते तब तक आप अपवित्र रहते हो। और भगवान चाहे किसी भी स्थिति में चले जाए, कोई भी अवतार ले ले, कोई भी लीला कर ले, भगवान के अंदर कोई अपवित्रता नहीं आती। भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। श्री प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। यहाँ श्री प्रभुपाद जी महान आचार्य षड गोस्वामियों के विषय में बता रहे कि वृंदावन के षड गोस्वामी अत्यंत ही संपन्न परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपर से उनकी दारुण दशा हो रही थी, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न थे। ऐसे महाभागवत मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी प्रकृति के त्रिगुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या संतोष, निद्रा या जागरण से कुलुषित नहीं होते। भले ही संसार में आ जाते हैं, प्रकृति के गुणों में भले दिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भूख, संतोष, मान, जागरण, इन सब कोई वो सब चीजें भौतिक कलमश उन्हें कुलुषित नहीं कर सकते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी इससे अप्रभावित बने रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही वो भौतिक आचरण करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु क्योंकि वो सदैव कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसलिए वो अप्रभावित रहते हैं। भगवान भी बताते हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल जब जल में रहता है फिर भी जल में रहकर भी वो निर्लिप्त रहता है, गीला नहीं होता, उसी तरह भगवान के भक्त संसार के सागर में रहते हुए भी कभी भी उससे लिप्त नहीं होते, तो फिर भगवान का क्या कहना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जीवन में उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई आध्यात्मिक में स्थिर नहीं माना जाता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे कि जीवन में उदासीनता होनी चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए, भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति, हमारा अनुराग कम होना चाहिए अगर हम आध्यात्मिक में स्थिर होना चाहते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति करते हुए भी भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के अंदर आसक्त हैं, अभी तक तो उदासीनता नहीं आई है, तो फिर आध्यात्मिकता में स्थिर नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य रहते हैं, भले ही वे कभी कभी आचरण का पतन भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखाई देता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त सदैव दिव्य स्टेज पर रहते हैं, जो भगवान को अपने हृदय में बिठाते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, वो सदैव दिव्य स्थित पर हो सकता है उनके आचरण में कभी कभी ऐसा दिखे कि वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं, पतन होता हुआ उनका दिखे, फिर भी ये केवल श्रील प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.30 में कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरे वसमंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी वास्तविक अवस्था में स्थित है। आगे भगवान श्री कृष्ण 9.31 में बहुत ही सुंदर कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा होकर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करेगा। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक घोषणा कर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कर्मश के कारण कोई भक्त पतित हो भी जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसकी सेवा के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मात तथा क्षणिक मानना चाहिए और वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वे देखते ही देखते सारी उसकी अपवित्रताएं छू मंतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में है, तो भगवान की शरण में आने वाले की समस्त अपवित्रताएं, समस्त काम भावनाएं, समस्त वासनाएं, समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो बोला भगवान के अंदर कोई दोष कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, पहले हम पढ़ लेते श्लोक में, तमयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगिनम। भगवान असंगी है लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि कृष्ण आसक्त है स्त्रियों में, ये असंगी है फिर भी लोग उन्हें संगी मानते हैं। भगवान के तत्व का पता नहीं, भगवान की रियलिटी का पता नहीं, इसलिए वो या तो अबोधा, वो क्योंकि अज्ञानता में है, भगवान के विषय में नहीं जानते, वो भगवान इसी लीला करते हैं कि वो भगवान को भी अपने समान मनुष्य मानते हैं। आगे अत्यंत सुंदर बता रहे हैं सुख गोस्वामी श्लोक नंबर 39, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। तम मे निरे बला मूढ़ा स्त्रीण चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा
स्त्रीणं शानुव्रतं रह अप्रमाणमिदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा तं मे निरे बलामूढा स्त्रीणं शानुव्रतं रह अप्रमाणविदो भर्तुर् ईश्वरं मतयो यथा।
शब्दार्थ तप मेनी रे बलामूढ़ा। तम मन उसको भगवान, ऐसे परम पुरुष भगवान को जो प्रकृति के अंदर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से बद्ध नहीं रहते, सदैव सर्वशक्तिमान है और योगेश्वर कहलाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मेनी रे बलामूढ़ा। मेनी रे मतलब ऐसे समझती हैं ये स्त्रियां, क्योंकि वो बहुत सरल हैं, सुकुमार हैं। वो स्त्रियां भगवान की वास्तविकता को समझती नहीं है, और भगवान की जो माया है वो कार्य ऐसे करती है कि वो भुला देती है। भगवान की योग माया जो है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, समस्त जो भगवान के प्रेमी होते हैं सह भगवान के साथ कोई भी संबंध जोड़ देते हैं। जिस प्रकार भगवान के साथ यदि कोई स्वामी का, कोई मित्र का, कोई पुत्र का, कोई प्रेमी का संबंध जोड़ता है, तो भगवान की माया शक्ति क्या करती है कि वो भगवान की भगवतत्ता को भुला देते, भगवान के ऐश्वर्य को। क्योंकि यदि ऐश्वर्य बीच में रहा, याद रह जाए कि जिससे मैं प्यार करती हूँ भगवान है, तो फिर ना वो प्रेम का वास्तविक आनंद नहीं उठा सके। प्रेम में बराबरी होनी चाहिए। यदि हम अपने भगवान को अपना पुत्र मानते हैं और साथ में याद रह जाए कि वो मेरा पुत्र है परंतु वास्तव में भगवान है, तो वास्तविक जो पुत्र का प्रेम, जो पुत्र को डांटना है, पुत्र को स्नेह करना है, वो रहेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवतता या ऐश्वर्य जो है वो बाधा बनेगा। इसलिए वो माया क्या करती है, वो ढक देती है ज्ञान को। तो ये जो स्त्रियां हैं, क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, वो अपना पति मानती हैं कृष्ण को, और वो सोचती हैं कि भगवान जो है वो स्त्रीण है। स्त्रीण है मतलब वो स्त्री के अधीन है। देखो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए कैसे करते हैं, कभी वो पारिजात का वृक्ष लेकर आ जाते हैं, कभी क्या करते हैं हमारे लिए, कभी हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, जब हम नाराज होती हैं तो हमें मनाते हैं। तो भगवान को तम मेनी रे बला मूढ़ा स्त्रीरम चानुव्रतम रह, कि वो सोचती हैं कि वो इसी तरह अपनी पत्नी पति धर्म का पालन करते हैं और सदैव हम जैसा चाहते हैं एकांत स्थान में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन आगे कहते हैं अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। अप्राण विदो यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की महिमा को नहीं मानते हैं, वो अप्रमाण को कहा जाता है, जो भगवान की महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी मति के अनुसार, मत ईश्वरम मतयो यथा, अपनी मति के अनुसार ही भगवान के विषय में सोचते हैं कि भगवान ऐसे हैं, या अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है भगवान उसको ऐसा ही लिखता है। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान को कोई कामी व्यक्ति समझता है तो भगवान उसको कामी व्यक्ति ही लिखते हैं। भगवान को कोई ये सोचता है कि इतनी सारी स्त्रियों के काम में आकर उन्होंने इतने विवाह किए तो उनको ऐसा ही लगता है। भगवान अपनी भगवतत्ता झाड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त बनता है, भक्त्यामाम अभिजानन्ति, भक्त बनोगे तो मुझे जानोगे, अगर नहीं बनोगे तो। भगवान कहते हैं 7.25 में नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयम् नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। मैं समस्त लोगों के सामने तो प्रकट ही नहीं होता हूँ। इसलिए जो बेवकूफ होते हैं वो जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, और मैं भी खुद को योग माया के द्वारा ढक देता हूँ और उनको ये बताता नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो स्त्रियां तो भगवान को प्रेम करती थी, इसलिए भगवान के प्रभुत्व को या ऐश्वर्य को नहीं समझती थी। लेकिन साधारण प्राणी तो जो भगवान की महिमा से अनभिज्ञ हैं, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इससे भगवान की महिमा को नहीं समझते। और वहां देखिए, वे सरल तथा सुकुमार स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रियतम पति श्री कृष्ण उनके अनुचर हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनभिज्ञ थीं जिस प्रकार अनासक्त लोग वैसे सॉरी जिस प्रकार से नास्तिक लोग परम नियंता स्वरूप भगवान से अनभिज्ञ होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अजात महिमा से पूर्णतया अवगत नहीं थी, जो सदैव भगवान के साथ रहती थी, जो भगवान के इतने ऐश्वर्य को सदैव देखती थी, निरंतर भगवान के साथ, वो भी भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की महिमा को पूर्णतया समझ नहीं पाती थी। यह अज्ञान सांसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनकी नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है, भगवान की शक्ति ऐसा करती है। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान पांच प्रकार से दिव्य संबंधों ईश्वर स्वामी मित्र पुत्र प्रेमी के भाव में आदान प्रदान करते हैं और इन प्रत्येक लीलाओं में वे अपनी योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं, माता यशोदा के सामने वे पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के समक्ष वे प्रेमी के रूप में और द्वारिका की रानियों के समक्ष पति के रूप में क्रीड़ा करते हैं। भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो जिनमें आकाश में भगवान के पार्षद रूप में कार्य करते हैं, जहां अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। श्री रूपा जी बोलते हैं, ये जो संसार में भगवान लीला कर रहे हैं ना, तो वो दिव्य जगत की पूरी यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं अपने पार्षदों सहित। तो वे क्या होता है, ताकि साधारण व्यक्ति भी ये सोचे कि भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कितना मनोहर है। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जहाँ भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता है और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति के का ही प्रदान रहता है, ऐसे भगवत भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। भगवान के साथ जो आदान प्रदान करते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, वो वास्तव में भगवान के दिव्य पार्षद होते हैं, उन्हीं के साथ भगवान ये लीलाएं करते। तो ये स्त्रियां कोई साधारण थोड़े थी, ये तो बहुत जन्म जन्मांतर तक उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, वो भगवान के शुद्ध भक्त होंगे, तभी भगवान ने उन्हें या उन्हें भगवान की स्त्री बनने का, भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थता या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, और वे यह मान बैठी कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके साथ साथ चलने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भली भांति नहीं जान पाते, अतएव शोधार्थी या मीमांसक भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। मीमांसक विभिन्न मतों के विषय में
कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अव्यय स्वरूप हैं या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, किंतु यह तो भगवान विषयक अधूरा ज्ञान है। वो भले ही भगवान को सृष्टि नियंता सोचे, सृष्टि के कारण सोचे, सर्वशक्तिमान सोचे, परंतु वास्तव में भगवान दिखते कैसे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कैसे करते हैं, वो तो इसमें ये सारा ज्ञान तो नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो भगवान के विषय में अधूरा ज्ञान है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनभिज्ञ रहते हैं, जो मीमांसक होते हैं, चिंतन करते हैं, वो भी सामान्य मनुष्य की तरह ही अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। इसलिए शास्त्र बहुत सुंदर बताता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यतेन्द्रिय, इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम गुण लीलाओं के विषय में नहीं समझा जा सकता। तो कैसे करे, इंद्रियों से नहीं समझे तो कैसे समझे। सेवान मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव सुफूर्त्यदा, जब हमारी सेवा से, हमारे प्रयत्न से, हमारे पवित्र नाम को श्रवण करके, हम जब भगवान के पवित्र नाम को श्रवण करेंगे, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाएंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्वयमेव सुफूर्त्यदा, भगवान स्वयं हमें अपने आप को जन्माएंगे। हम भगवान को अपनी क्षमता से नहीं, भगवान को केवल भगवान की कृपा से जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। क्योंकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध दिव्य प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कल्मिश रहित दिव्य पद पर आसीन है। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जिसके साथ भी कोई संबंध करते हैं तो साधारण नहीं होते हैं, वो दिव्य स्तर पर होते हैं, और भगवान उनके साथ जिस प्रकार भी आदान प्रदान करता है वो भी साधारण संसार में स्त्री पुरुष के संबंध की तरह नहीं होता है, वो भी दिव्य होता है। लेकिन वो दिव्य संबंध को हम इन भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं जब तक भगवान की कृपा प्राप्त न हो, जब तक शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त न हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश शीर्षक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। आज भगवान अपने महल में आ गए हैं अपनी पत्नियों के साथ। अब भगवान द्वारिका में सुख से रहने लगे, और सुख से रहने कहने का क्या है कि अब इसके बाद भगवान कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध ही भगवान ने अपने इस लीला में अंतिम युद्ध किया था। इसके बाद भगवान अब किसी का वध नहीं करेंगे, और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वो आए थे, अब उन्होंने पृथ्वी का भार दूर कर लिया द्वारिका में। अब वो सुख से रहेंगे अपनी पत्नियों के साथ। वास्तव में भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान युद्ध से परे रहें, सुख से रहें। और अब यहाँ 11वें अध्याय की समाप्ति में हमें ये पता चला कि भगवान अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में आनंद से रह रहे हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसानां संहितायां प्रथम स्कंदे श्रीकृष्ण द्वारिका प्रवेशे नामकाद्वा एकादशोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण, धन्यवाद।